अभी अभी नौकरानी के नितंबों का दृष्टिभोग करके मैं जो अपने पत्नी व्रत के पथ से क्षणांश के लिए भटका था, उसकी ग्लानि इस अतिरिक्त मधुर वाणी से मेरी चतुर जीवन संगिनी पर व्यक्त हो गई थी। सचमुच वो मेरे सामने खड़ी मुझे हिंसक भाव से देर तक घूरती रही थी। अंदर तो जान धुकधुका रही थी, मगर ऊपर से मैं निर्विकार भाव से मांजर की भांति आंखें मिचमिचाए पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो दुंदुभी की तरह अपने पैरों के नीचे धरती में कंपन उत्पन्न करती हुई चली गई थी। नौकरानी भी न जाने कब भाग खड़ी हुई थी। अवसर पाकर मैं फिर कांताबाई के नितंबों पर ध्यान एकाग्र करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि बाहर से पत्नी देवी का कर्णभेदी स्वर सुनाई पड़ा। वो अपनी पड़ोसन से दही जमाने के लिए थोड़ा जामन मांग रही थी। पड़ोसन अमला ने भी उतनी ही ऊंची आवाज में जवाब दिया कि वो अभी नहा रही है, थोड़ी देर बाद जामन भिजवा देगी। उसकी बात मेरे कान में पड़ते ही मैं इस तरह से औचक खड़ा हो गया जैसे कोई स्प्रिंग लगा गुड्डा। हमारे बाथरूम के रोशनदान से अमला भाभी का पिछला आंगन दिखता था। आंगन के एक कोने को घेर कर उसके गुसल की छोटी सी जगह थी, जिसमें दरवाजे की जगह टाट का पर्दा लगा हुआ था। दोपहर में जब अधिकतर घर में कोई रोशनी नहीं होती, वो टाट का पर्दा गिराए बिना ही नहाती थी। एक बार अपने बाथरूम के रोशनदान पर मकड़ी के जाले साफ करते हुए मुझे इस बात का पता चला था, और फिर उस दिन के बाद मैं जाने कितनी बार छिप छिप कर बाइस्कोप देख चुका था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बैठे बिठाए अली बाबा का खुल जा सिमसिम वाला मंत्र मिल गया है। जब मन चाहे मैं खुल जा सिमसिम कहता और मेरे सामने तिलस्मी दुनिया का भव्य दरवाजा खुल जाता। अंदर मेरी भाभी अर्थात श्रीमती अमला त्रिपाठी मंदाकिनी स्टाइल में स्नान करती हुई दिखती, और मैं शरीफ आदमी संकोच और नैतिकतावश एक आंख मूंदे सिर्फ एक आंख से, वो भी तिरछी नजर से, देवी का जलाभिषेक देखता। संबंध में वो मेरी मुंह बोली भाभी लगती थी। फिर अम्मा भी कहती हैं पराई नार को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं बहुत अच्छी नजर से उन्हें अच्छी तरह देखते हुए अच्छी अच्छी बातें सोचा करता था। मसलन यदि कभी मुझे उसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए तो मैं किस भांति तथा भांति भांति से उनकी सेवा करके उन्हें तुष्ट संतुष्ट करूंगा ताकि अपने इस देवर पर उन्हें नाज हो सके। अमला भाभी को नहाते हुए देखते हुए शायद मेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुल गया था। एक मक्खी भिनभिनाते हुए मुंह के अंदर चली गई तो जोर जोर से खांसते हुए बाल्टी, जिसे उल्टा करके मैं चढ़ा हुआ था, समेत नीचे गिर पड़ा। चह बच्चे के कोने से सिर टकराया तो तत्काल माथे पर एक आलू के बराबर गूमड़ निकल आया। आवाज सुनकर पत्नी ने प्लास्टिक का दरवाजा भड़बड़ाकर एक ही मिनट में खोल डाला। अंदर मुझे भीगे हुए कुर्ते पजामे में इस तरह भीगी बिल्ली की तरह खड़े हुए देखकर उसकी आंखें एक बार गिद्ध की भांति सिकुड़ गईं। मैं अपना सिर सहलाता हुआ कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ ही रहा था कि वो कमर पर दोनों हाथ धरे जासूस गोपीचंद की तरह स्थिति का मुआयना कर रही थी। मुझे उसके भिजे हुए होंठों में अदृश्य सिगार दिख रहा था, जिसके धुएं के छल्ले उठकर रोशनदान की तरफ जा रहे थे। रोशनदान की तरफ उसकी दृष्टि निबद्ध देखकर मेरा कलेजा सूख गया था। उसका ध्यान उधर से हटाने के लिए मैं तत्काल सिर चकराने का बहाना करते हुए लड़खड़ाने का अभिनय करने लगा। उसने मुझे थामकर शयन कक्ष में लाकर बिस्तर पर लेटा दिया था। आंखें बंद किए किए मैं लेटे लेटे सोच रहा था, इस बार भी हनुमान जी की कृपा से मैं बच गया। आनन फानन में मैंने 5 रुपए के लड्डू चढ़ाने की मन्नत मांग ली। पिछली बार प्लास्टिक की बाल्टी पर चढ़ने से बाल्टी पिचक गई थी और मैं मुंह के बल चहबच्चे में घुस गया था। उस दिन अगर पत्नी ने पीछे से आकर मुझे बाल पकड़कर बाहर न निकाला होता तो मेरी निश्चित ही जल समाधि हो जाती। उसके बाद बाजार जाकर मैं लोहे की बाल्टियां खरीद लाया था ताकि उन पर खड़े होकर निश्चिंत होकर दूसरी तरफ का नजारा लिया जा सके। ये सब मैं सोच ही रहा था कि तभी पत्नी की चीख सुनकर चौंक पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वो घबराई हुई अंदर आई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मेरे पास बैठकर कांपती हुई उसने रुक रुक कर कहा था, वो रोशनदान, बाथरूम। बाथरूम, रोशनदान? ये शब्द सुनते ही मेरे देव कूच कर गए थे। इस बार तो मैं जरूर पकड़ा गया। हे ईश्वर, मेरी बातों पर ध्यान न देकर वो हकलाती हुई कहती रही, वो त्रिपाठी भाई साहब खुले आंगन में ऐसे नहाते हैं? छी, कोई बच्चे हैं? इतने बड़े होकर नंगे नहाते हैं? सुनकर मेरे सामने सारा मामला स्पष्ट हो चुका था। जरूर मेरे पीछे श्रीमती जासूसी करने रोशनदान से झांकी होंगी, तो अमला भाभी की तरह त्रिपाठी भाई साहब भी दिगंबर होकर ओहो, अचानक जैसे मुझे राहत मिली थी कि चलो मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई। मगर फिर दूसरे ही क्षण ये सोचकर कि मेरी पत्नी त्रिपाठी भाई साहब को विवस्त्र देख चुकी हैं, मुझे जोर का झटका लगा था। त्रिपाठी भाई साहब सुदर्शन पुरुष हैं, अपनी भूड़ी पर हाथ फेरते हुए मेरा दिल बैठने लगा था। बिगड़े बच्चों को संभाल नहीं पा रहा, अब बीवी बिगड़ गई तो? मेरी तरह पत्नी को भी क्लाइडोस्कोप देखने का शौक लग गया तो? तत्क्षण मेरी मुठ्ठियां भिज गई थी। बेशर्म औरत, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी दूसरों के घरों में झांकने की? क्या मेरे पीछे भी यही सब करती हो? तुम्हें अपनी मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं, एक विवाहित स्त्री होकर? मेरी बातें सुनकर पत्नी का चेहरा फक पड़ गया था। वो भयभीत नेत्रों से मुझे देख रही थी। मैं उठकर दांत पीसते हुए बाहर निकल गया। आज ही मजदूर बुलाकर ये रोशनदान बंद करवाता हूं और तुम्हें भी इसी दीवार से अनारकली की तरह चुनवाता हूं, पत्नी पीछे से पुकारती रह गई थी। और मैं घर से निरुद्देश्य निकल गया था। थोड़ी दूर जाने पर मुझे गुड्डी की सहेली मधु दिखाई दी थी। उसने मुझे देखते ही हेलो अंकल कहकर हाथ हिलाया था। हेलो बेटा, मॉडर्न अंकल बनकर मैंने उसके अभिवादन का जवाब दिया और कुछ दूर निकलकर मुड़कर पीछे से उसे देखा था। टाइट जीन्स और टी शर्ट में उसका फिगर बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अपने उश्रृंखल होते विचारों को मैंने लगाम लगाया। मेरी बेटी गुड्डी की सहेली है। इसके बाद बिना सोचे समझे मैं तिवारी जी के घर में घुस गया था, क्योंकि यही घर सबसे पहले दिखा था। तिवारी जी खा पी कर अभी अभी डकार लेते हुए बैठे थे और झाड़ू की काठी से अपने दांत खोद रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने शतरंज बिछा दिया। उनकी पत्नी ने मुझे पानी का गिलास पकड़ाते हुए मुंह बनाया, पर मैंने बुरा नहीं माना। उनका रंग दूध जैसा गोरा था और गोरे लोगों के चेहरे पर कोई भी भंगिमा बुरी नहीं लगती। पहली बार पानी पीते हुए मेरे ध्यान में आया था कि उनके भी नहाने की जगह आंगन के कोने में है। मेरा हृदय श्रीमती तिवारी के स्नान दृश्य की कल्पना करते हुए फिर से दुकदुकाने लगा था। शतरंज की चार पांच बाजियां खेलकर शाम ढलते ढलते जब मैं अपने घर लौटा, मेरी पत्नी ने रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसे शायद लगा था कि मैं गुस्से में घर त्याग करके कहीं चला गया हूं। खैर, मैं उसके इस भ्रम को बनाए रखना चाहता था, इसलिए मन ही मन उसकी दयनीय स्थिति का आनंद उठाते हुए चेहरे पर दुर्वासा का सा भाव लिए कमरे के अंदर जा बैठा। मेरी अम्मा एक सनातन सास की सफल भूमिका निभाते हुए अपनी बहू रानी को आंगन की खटिया पर पसर कर लगातार कोसी जा रही थी। मैं कनखियों से उसकी मुख मुद्रा देखकर मजे ले रहा था। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अपनी दुर्दांत पत्नी की ये बेचारी सी अवस्था देखकर मैं अंदर ही अंदर एक हिंसक प्रसन्नता से भरा जा रहा था। थोड़ी ही देर में बहुत समारोह के साथ मेरे सामने 56 भोग परोसा गया। पुड़ी नमूना, अचार, मखाने की गाढ़ी खीर, भोजन देखते ही पेट के अंदर मेरी अतड़ियां चटक उठी थीं। याद आया था आज दोपहर मैंने भोजन किया ही नहीं। सुबह के चार पराठे कब के हजम हो चुके थे। अपने लालच दबाए मैं बहुत देर तक मुंह भारी करके ना नुकुर करता रहा था और बहुत मान मनोवल के बाद ही खाने को राजी हुआ। क्रोधित कुत्ते की तरह हल्के गुर्राते हुए मैंने डटकर खाया और फिर बिस्तर पर मुंह फुलाए पसर गया। मेरी पत्नी घर का काम निपटाकर घंटे भर बाद बगल में चुपचाप आकर लेटी। मैंने महसूस किया कि वो नहाकर आई है। उसके भीगे बालों से चमेली के तेल की सी गंध आ रही है। मेरी ऐंठी हुई स्नायु अनजाने ही मुलायम पड़ने लगी थी। बिस्तर पर मंचित होने वाले एक वैवाहिक नाटक की भूमिका के लिए मैं मन ही मन तैयार होता हुआ जाहिर तौर पर किसी शव की तरह बिना हिले डुले पड़ा था। मेरी पीठ के पीछे चूड़ियां छनक रही थीं, पाजेब छनक रहे थे और मैं दुर्बल पड़ता जा रहा था। स्थिति ये थी कि एक संकेत मात्र की प्रतीक्षा में मैं व्यग्र हुआ जा रहा था। सत्यानाश हो हमारी स्त्रियों की इस भारतीय लाज लज्जा और संकोच का। एक एक पग उठाने में सदियां बिताती हैं। इस तरह तो पूरी रात ही ढल जाएगी। कल फिर सोमवार ऑफिस के काम में जुटना पड़ेगा। मेरी स्नायु में तनाव अब चक्रवात का भयंकर रूप लेने लगा था। खुद को संभालना कठिन हो रहा था। और यस, तभी मेरी पत्नी का 2.5 किलो का सनी देओल मार का हाथ मेरी पीठ पर हल्के से पड़ा और मैं तत्क्षण फिरकी की तरह घूम कर उससे लिपट गया था। वो भी किसी लता की तरह मेरी देह से लग गई थी। थोड़ी देर तक मान मनुहार जैसे निरर्थक और टाइम पास बातों का आदान प्रदान हुआ और फिर हम मुख्य मुद्दे पर आ गए। जैसा कि सारे विवाहित व्यक्ति जानते हैं, दुनिया के सारे वैवाहिक झगड़े बिस्तर पर ही सुलझाए जाते हैं। संधि समय लगभग वही 1:12 बजे, कंप्रोमाइज एट मिडनाइट। अपनी पत्नी के प्रति पहले की तरह रोमांटिक महसूस करना अब इतना सहज नहीं रह गया था, खासकर उसके वर्तमान रंग रूप में। आखिर किया भी क्या जा सकता है इस मामले में, ये दिल मांगे मोर, यू नो। सो अपनी पत्नी को बर्दाश्त करने के लिए तथा इन क्षणों को कुछ जरूरत से ज्यादा रोचक बनाने के लिए मैंने मन ही मन अपनी अमला भाभी का आह्वान किया और वो तत्क्षण मंदाकिनी की तरह जलप्रपात सहित हमारे बिस्तर पर अवतरित हो गई। मैंने अपनी पत्नी का नाम होठों ही होठों में दोहराते हुए मंदाकिनी देवी के दर्शन में लगाया। इससे पहले कि मैं आगे की मुख्य कार्रवाई शुरू कर पाता, यकायक मेरी पत्नी भी अप्रत्याशित रूप से दुशासन का अवतार ग्रहण करते हुए मेरे चीर हरण में उद्धत हो गई थी। मैं अवाक हतवाक, मुझे जोर का झटका वाकई जोर से लगा और मैं सुखद आश्चर्य से भरकर उस अंधेरे में ही उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न करने लगा। आज तो चमत्कार हो गया। अपनी 9 गजी साड़ी में हर मौसम में सर से पैर तक मुड़ी रहने वाली मेरी लाजवंती पत्नी, जो विवाह के 20 बरस बाद भी बंद कमरे में नई दुल्हन की तरह शर्माती है, अचानक राखी सावंत जैसी बोल्ड मगर नहीं ब्यूटीफुल, मेरा चीरहरण करने पर उतारू हो गई थी। मगर मैं भी कौन सा द्रौपदी था कि रोकर अपने सखा को स्मरण करता। निर्लज्ज पुरुष होने के नाते उल्टे प्रसन्नता में दांत निकालकर हंस रहा था। चलो ये कुछ काम की हुई तो, चाहे फिर इतनी देर से ही सही। देर आए तुरुस्त आए, दिगंबर प्राय होकर मैं उसे भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित करने के लिए प्रवृत्त हुआ, मगर वो बिना मेरी सहायता के ही स्वयं इस शुभ कार्य को संपन्न कर बैठी। इसे कहते हैं स्वावलंबी होना। अंधकार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा था उसे निरख कर मैं आनंद से भाव विवल होकर अपनी आंखें मूंद कर कह बैठा, अमला भाभी तुम कितनी सुंदर हो। इससे पहले कि अपनी भयंकर गलती का एहसास मैं अपनी जीभ को रगड़ देकर रोकता, झट से अंधकार में श्रीमती जी का स्वर गूंजा था, आप भी तो कितने हैंडसम हैं त्रिपाठी भाई साहब। थड़ाम, सदी का तीसरा एटम बम गिरा था और दुनिया के नक्शे से एक और हिरोशिमा मटियामेट हो गया था। मैं बिजली का भयंकर झटका खाकर खाट से नीचे गिर पड़ा था और अंधकार में होश खोकर संज्ञाहीन होने से पहले अपनी पत्नी का घबराया हुआ स्वर सुन रहा था, सुनिए जी ये आपको क्या हो गया, एक ही नाम सुनकर गश खा गए। मैं तो आपके मुंह से न जाने किस किस का नाम सुन सुनकर भी आज तक अपना होश संभाले हुए हूं। उसके प्रश्नों का उत्तर न देकर मैंने फिलहाल अचेत हो जाना ही श्रेयस्कर समझा। उस समय ठीक 12 बजे थे और मेरा छुट्टी का दिन समाप्त हो चुका था। जयश्री राय की कहानी छुट्टी का दिन। कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस, URL kathapath.blogspot.in।